ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय तो श्लोक संख्या 48 और इस अध्याय का नाम है असुरराज हिरण्यकश्यप। वितथा विन्योऽसोऽयम् यद्गुणेश्वर तद्दृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं निशा तथा विनियोसोऽयम् यद्गुणेश्वर तद्दृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा तथा विनियोसोऽयम् यद्गुणेश्वर तद्दृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा। शब्दार्थ वितथा व्यर्थ अभिनिवेश धारणा अयम यह यह जो गुणेषु प्रकृति के गुणों में अर्थ तथ्य के रूप में दृग्वचः देखना तथा बोलना यथा जिस तरह मनोरथ मानसिक कल्पना दिवा स्वप्न 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 सर्वम सब कुछ इंद्रियकम इंद्रियों से उत्पन्न मृषा झूठ। अनुवाद होता पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरित रहता है और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण सोचने लगता है या जब वह रात में सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमण करता देखता है तो ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। मेरे पीछे दोहराइए प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप में से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरित रहता है और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण सोचने लगता है या जब वह रात में सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमण करता देखता है तो ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य भौतिक इंद्रियों के कार्यकलापों से प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख वास्तविक नहीं होते। अतः भगवद गीता ऐसे सुख की बात करती है जो भौतिक जीवन बोध से परे हैं। जब हमारी इंद्रियां भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाती हैं तो वे अतिंद्रिय अर्थात दिव्य इंद्रियां बन जाती हैं और जब ये दिव्य इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगी रहती हैं तो मनुष्य को असली दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है। अपने सूक्ष्म मन के मनोरथ द्वारा हम जो भी सुख या दुख निर्माण करते हैं उसमें यथार्थ वास्तविकता नहीं होती, वह मात्र मरोनर्थ होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मनोरथ द्वारा तथाकथित सुख की कल्पना न करें। प्रत्युत सबसे अच्छा मार्ग तय है कि मन को ऋषिकेश की सेवा में लगाया जाए और वास्तविक आनंद में जीवन का अनुभव किया जाए। वैदिक उक्ति है, अपार अपाम सोग्रामृता अभूम अवसो विरचनम। ऐसी विचारधारा से मनुष्य स्वर्गलोक जाकर युवतियों के साथ भोग करना तथा सोमरस का पान करना चाहता है, किंतु ऐसे काल्पनिक आनंद के कोई महत्व नहीं है। जैसे भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, अंतमंतु फलम तेसाम तद्भवत मेधसाम। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को सीमित तथा क्षणिक फल प्राप्त होता है। यदि कोई सकाम कर्म द्वारा या देवताओं की पूजा से इंद्रिय भोग के लिए स्वर्गलोक चला भी जाए तो भगवद गीता द्वारा ऐसे पद को अंतवत अर्थात नश्वर बताकर निंदा की गई है। जो इस तरह से सुख भोगता है वह स्वप्न में सुंदरी का आलिंगन करने जैसा होता है, भले ही कुछ काल के लिए यह सुख कर हो कि मूलतः यह मिथ्या होता है। इस जगत में सुख तथा दुख की मानसिक कल्पनाओं की तुलना स्वप्न से की जाती है, क्योंकि वे झूठे होते हैं। भौतिक इंद्रियों का उपयोग करके सुख प्राप्त करने के सारे विचार मिथ्या आधार भूमि पर टिके होते हैं, अत्य व्यर्थ होते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो बड़े ध्यान से सुनेगा, क्योंकि यह बहुत ही उपदेशात्मक और हम सब के जीवन के लिए, विशेषकर जो भक्ति मार्ग में है उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है, जबकि संदेश सबके लिए आवश्यक है। तो प्रसंग इस तरह से है कि जब हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया, किस रूप में उतार लिया था, वाराह के रूप में उतार लेकर के, तो स्वाभाविक है कि जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उसके परिवार के लोग अर्थात उसकी पत्नी वृषाभानु और जितने भी बच्चे सब दुखी थे, स्वाभाविक है दुख होता है। तो उनके उनके दुख को कम करने के लिए ये जो है हिरण्याकश्यप शिक्षा देने लगा, और शिक्षा में उसने एक कथा सुनाई है। वो कथा में सुना रहा था, समझाने के लिए एक प्रसंग सुनाया, किस तरह से एक स्वर्ग के नाम का राजा था, उसके हजारों पत्नियां थी, माने बहुत पत्नियां थी रानी। तो युद्ध में जब उसका पति अर्थात राजा मारा गया, जितनी रानियां थी ये सब इकट्ठे होकर क्या करने रोने लगी। ये स्वाभाविक है, जैसा हम लोग भी देखते हैं कोई चला जाता है तो स्त्रियां रोने लगती हैं, लेकिन इन रानियों का जो रोना था बड़ा भयानक था कि उनके रोने की आवाज़ यमराज तक पहुँच गई। तो यमराज एक बालक के रूप में इनको शिक्षा देने के लिए उनके पास आए और उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, यमराज जो है बताने लगे। तो वही प्रसंग चल रहा है किस तरह से उनको शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम लोग रोते 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 तो ही मर जाओगे, लेकिन जो मर गया है वापस नहीं आएगा। इससे रोना क्या है, व्यर्थ है। अगर किसी को रोने से कोई वापस आ जाए तो आप रोइए, आंसू भाई है, लेकिन जब ऐसा नहीं होने जब ऐसा नहीं होने वाला है तो हम रोए क्यों, तो ऐसा वो शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इस श्लोक बताया गया है कि प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरता रहता है और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण सोचने लगता है, या जब वह रात में सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखता है, तो मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये सच को समझना आसान नहीं है। सच है लेकिन हम समझ नहीं पाते। इतना सुंदर ढंग से समझाया गया है कि प्रकृति के गुणों था उसमें उत्पन्न था कि सुख, ये सुख और दुख, ये प्रकृति के जो गुण हैं तीन गुण उसी से उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये सुख और दुख ये दोनों क्या होते हैं, व्यर्थ होता है। क्योंकि जो हमारी स्थिति है, हाँ हमारी स्थिति क्या है कि आत्मा, हम आत्मा हैं और हृदय में हमारा स्थान है और हमारे साथ जिसके हम अंश हैं अर्थात परमात्मा, वो भी हमारे साथ ही होते हैं। तो इसके बावजूद परमात्मा हमारे साथ हैं, आत्मा हम उन्हीं का अंश हैं, हम ही हैं, लेकिन फिर भी हम जो है इस भौतिक संसार में आकर के भौतिक सुखों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसको इस तरह समझेंगे, क्योंकि आप सब अच्छी तरह जानते हैं, एक शरीर, भौतिक शरीर जो कि दिखाई देती है ना, जैसे हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हो तो आईडी दिखाते कि नहीं दिखाते, तो किसकी फोटो दिखाते हो, शरीर का। जबकि सच्चाई ये है कि हम सब जानते हैं कि हमें शरीर नहीं है। जैसे कोई संत पुरुष जाए और कोई उनसे आईडी प्रूफ मांगे और वे कहें कि मैं तो आत्मा हूँ, तो वो नहीं मानेंगे कि आप आत्मा हो, लेकिन आप अपना आइडेंटिटी दिखाओ। तो जितने ज्ञानी पुरुष, हम सब जानते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम शरीर का ही महत्वपूर्ण भौतिक संसार, ये जान लीजिए। आप खुद सोचिए, अगर आपको जीवा नहीं होती तो भगवान का नाम कैसे लेते। पट खुलता है, आप प्रणाम करते हैं, अगर शरीर नहीं होते तो आप कैसे प्रणाम करते, सोचिए। वास्तव में हम आत्मा हैं, और जब हम इच्छा जाहिर करते हैं इंद्रिय तृप्ति भोगने की, तब इस भौतिक संसार में हम आ जाते हैं। अच्छा, तुम भोगना चाहते हो तो भौतिक संसार में जाओ और भोगो। अब चूंकि आत्मा को भोगना है, हमारी इच्छा भोगने की है, आत्मा क्या करती है, शरीर को साथ लेके आती है। इसलिए चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, मनुष्य हो, इस संसार में जब आता है तो शरीर को लेकर के आता है। ये ध्यान रखिए, हम शरीर लेकर, हम आत्मा है ना, तो शरीर लेकर हम ही आते हैं। तो हम शरीर लेकर के आते हैं किसके लिए, भोगने के लिए। क्योंकि बिना शरीर के आप भोग ही नहीं सकते। आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, दूध पीते हो, फल खाते हो, राइट। अगर शरीर नहीं होते तो कोई टेंशन नहीं था। टेंशन इसलिए है, सारा दुख का कारण इसलिए है कि हम इस शरीर लेके आए हैं। और ऐसे शरीर, आत्मा, हम कितने चालाक हैं, हम तो शाश्वत हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम जानते हैं। लेकिन जिस शरीर को हम लेके आते हैं वो हमारे साथ नहीं देती है, क्योंकि वो क्या है, नश्वर, नष्ट होने वाली। तो हम ऐसी चीज को लेके आते हैं, है ना, जो कि हमें धोखा देने वाली है, जो हमारे साथ टिकेगी नहीं, ये सच्चाई है। अब उसके साथ हमारा क्या हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, इसलिए हम भुगतते हैं। कष्ट का कारण यही कि जिस शरीर को हम लेके आते हैं उस शरीर के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, आप हटा नहीं सकते। क्यों, शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, जो दिखाई नहीं देगा, अब बिना आत्मा के शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। लाइफ चैतन्य अवस्था तभी होती है जब दोनों होते हैं, आत्मा और शरीर जब एक साथ रहती है तभी आप मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक चला जाए, अगर आत्मा चला जाए आपकी मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी, शरीर व्यर्थ हो जाएगी। और आत्मा रहे शरीर न रहे तब मुस्कुरा ही नहीं सकते कि शरीर है ही नहीं। इसलिए दोनों का अस्तित्व है। एक देसी तो कहावत है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जन्नते खुशियां इसी में है कि हम भी हो और तुम भी हो। आत्मा और शरीर जब दोनों साथ रहते हैं तो हमारा चैतन्य अवस्था है, अर्थात दोनों की कीमत हम एक के सहारे नहीं रह सकते, ये जान लीजिए। अब आत्मा चूंकि हम आनंद लेने वाले हैं, आत्मा बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं ना, तो हम इंटेलिजेंट हैं। भगवान परम बुद्धिमान है तो चूंकि हम उनके अंश हैं, आत्मा है तो हमारे अंदर बुद्धि होती है। तो मन बुद्धि और अहंकार जिसे शास्त्र में कहा गया सूक्ष्म शरीर शकल बॉडी, ये शकल बॉडी ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये जान लीजिए। तो जो प्रभुपाद जी ने इस स्वप्न का एक उदाहरण दिया है बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे यहां जितने लोग बैठे हैं आप लोग स्वप्न देखते कि नहीं देखते? स्वप्न सभी देखते हैं, और किसी के स्वप्न साकार होते हैं और किसी के स्वप्न साकार नहीं होते हैं, लेकिन स्वप्न सभी देखते हैं। ये सच्चाई है नहीं सच्चाई? ये सच्चाई। तो देखिए जब स्वप्न देखते जिसका प्रभु यहां पर उदाहरण दिया गया है कि यहां पर देखा कि देख स्वप्न में किसी सुंदरी के साथ हम रमण कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का स्वप्न हो जाता है, मानो हमें स्वप्न देखते हैं कि स्वप्न में कोई हमें गुलाब जामुन दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब आप देखो तीन चार प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, जो हमारे भौतिक शरीर है जो हमें दिखाई देती है ना, बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे इस बात, क्योंकि बहुत कोई ज्ञान है जो पता जाए। तो ध्यान से सुनिए कि किस तरह से, अब देखिए जब आप जैसे प्रभुपाद जी बताया है कि सोने से पहले हमें कृष्ण बुक पढ़ करके सोना चाहिए और एक गिलास गर्म दूध पी के सोना चाहिए। ये सिस्टम हमारे इस कौन प्रभुपाद जी सिस्टम में, किसी हमारे भक्तों को गर्म गर्म दूध और सोने से पहले एक पेज ही पढ़ें लेकिन कुछ पढ़ करके सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सो तो गए, हमारी आंख खुलेगी नहीं खुलेगी कोई गारंटी नहीं है। सो गए सदा के लिए सो सकते हैं, इसलिए कम से कम सोने से पहले भगवान का पढ़ करके तो सोएंगे, ऐसा इसमें क्योंकि हमारे जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए इस वैदिक सिस्टम में सोने का तरीका है कि जब सोएंगे, और जब हम सो जाते हैं तब जो है दो प्रकार के शरीर काम करते हैं। ये जो भौतिक शरीर है ना, हम सो जाते हैं तो ध्यान रखिए यही समझना है कि जब भौतिक शरीर विश्राम करती है तो जो सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिव हो जाती है। इसको समझिए, जब भौतिक शरीर जो हमें दिखाई देती है जिसके माध्यम से हम खाते हैं पीते हैं सोते हैं हर इंद्रों का सुख भोगते हैं, वो जब आराम करती है तो मन बुद्धि अहंकार जो है वो एक्टिव रहता है, जिसे हम कहते हैं स्वप्न। क्योंकि आत्मा वो सोती नहीं है, आत्मा कभी सोएगी नहीं, आत्मा एक्टिव रहती है हमेशा। आत्मा और उस आत्मा के साथ मन बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है के साथ इंजॉय करता है, अर्थात हम आत्मा है ना, तो हम मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म बॉडी हमको मिली है जो हमारे साथ हमेशा रहती है हम उससे इंजॉय करते हैं, है ना। और मन बुद्धि अहंकार की बॉडी से जो हमें सुख मिलता है बिल्कुल वही सुख मिलता है जैसे इस भौतिक शरीर से हम सुख लेते हैं, माने टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता, ये जान लीजिए, जैसे अगर इस शरीर में आप गुलाब जामुन खाते हैं तो वही टेस्ट बनेगा, लेकिन जब ये शरीर सोती है, अस्वस्थ शरीर अर्थात जिसे स्वप्न कहा, जब स्वप्न में हम गुलाब जामुन खाते हैं तो टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता, ये जान लीजिए। होता है नहीं होता? नहीं होता। अगर इसमें कोई मारे एक झापड़, तो सपने में अगर कोई एक झापड़ मारे तो आप कहेंगे, जैसे यहाँ पे सांप दिखाई देता है तो आप डरते हो, और सपने जब सांप दिखाई तब भी आप डरते है ना। तो सूक्ष्म शरीर इसके टेस्ट में फीलिंग में कोई अंतर नहीं होता, ये जान लीजिए। यही कारण है कि जब इस शरीर में हम विश्राम करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में हम एक्टिव होते हैं, तो हर चीज में वैसे दिखाई देती है जैसे हम इस शरीर में दिन में देखते हैं। तो रात में से आप उड़ रहे हैं, राइट? सपने में कभी उड़ा है कि नहीं आप लोग? सपने आप उड़ रहे हैं, हाँ, किसी ने उनके पीछा किया, तमाम दुनिया भर के सपने होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप स्वस्थ शरीर में रात में सोते आन लेते हैं तो आप इस शरीर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि हम सो रहे हैं, आप हम कभी ये नहीं सोचते कि हम सो रहे हैं, हम आप एक्टिव हैं, अर्थात आप दिन में इस शरीर के साथ एक्टिव हैं और रात में जो है आप सुस्त शरीर के साथ एक्टिव हैं, क्योंकि आत्मा सदैव एक्टिव रहता है, ये जानो। इससे दोनों शरीर की जो कीमत है ये आप जान लीजिए। तो शटल बॉडी में रह करके हमें वही आनंद आता है जो हम सुख में जो इसमें आता है, जबकि दोनों क्या है, सुख क्या है, टेम्परेरी है, ये प्रभुपासना। अर्थात स्वप्न में जो हम आनंद लेते हैं उसका सुख या उसका दुख, और इस शरीर का सुख दुख, ये दोनों क्या है, एक द्वा स्वप्न है, ये दोनों हमारे लिए क्या है, सब टेम्परेरी है। क्योंकि जब दिन भर हम दौड़ते रहते हैं है ना, उसके जब सो जाते हैं तो इसका जो है चीज हम भूल जाते हैं, तो उस जब शरीर में एक्टिव हो जाते हैं, और जब इसमें एक्टिव हो जाते हैं, इस जब जैसे नींद खुलती है तब इसमें एक्टिव हो जाते हैं, तो मन बुद्धि अहंकार जो शरीर रहते हैं उसमें हम एक्टिव नहीं रहते, वो हम भूल जाते हैं। अर्थात दिन में हम इस में रात किस शरीर में का जो सुख मिलता है उसको भूल जाते हैं, और दिन में है ना, क्योंकि इसमें जब रात में सुख लेते हैं माँ से सुस्व शरीर के साथ तो इसको भूल जाते हैं। ये है ये दोनों, वही प्रभु समझाने समझिए थे कि ये दोनों क्या है, हमारे लिए व्यर्थ है। एक उदाहरण चिकित्सक की बात है, एक बार क्या हुआ, मैं ध्यान सुनेगा कि एक व्यक्ति बचपन में ही जंगल में चला गया, ध्यान सुनेगा, बचपन में ही वो जंगल में चला गया, और जंगल में जाने के बाद क्योंकि बचपन में ही जंगल चला गया था, तो जब बड़ा हुआ अर्थात जवान हुआ, तो एक बार एक बारात जा रही थी, बारात से शादी करने के लिए बारात जा रही थी, दूल्हा लोग बारात देख चल जा रहे थे, तब चूंकि अब जवान होता था उसकी इंद्रियां जो है यंग में इंद्रियां जो प्रबल हो गई, तो उसका कहा कि देखो ये आदमी कितना सुखी है, शादी करेगा है ना, बच्चे होंगे, माने जब कल्पना एक होती है वो सोचने लगा है ना। अब उसका दिल में ये विचार आने लगा कि मैं कहाँ यहाँ जंगल में अकेला इतने साल से तपस्या कर रहा हूँ, हम भी जो है अब गाँव चलते हैं और माता पिता से बात करके शादी की बात करते, हम भी दूल्हा बनेंगे, शादी होगी, ऐसा उसके मन विचार आया। विचार आते ही वो जो है सब काम छोड़ करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया, लेकिन घर उसका बहुत दूर था और जिस जंगल में रहता था जंगल बहुत बड़ा था। तो जब वो अपने घर जाने लगा तो जानते क्या हो गए, रात हो गई, अंधेरा हो गया। जब रात हो गई तो उसने सोचा कि हम कहीं विश्राम करते हैं और जब सुबह होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, गांव की ओर जाएंगे। तो आप लोग जो गांव के लोग हैं जानते होंगे कि वहाँ पे कुआं होता है, कुआं जानते ना, कुआं होता है, और कुआं काफ़ी चौड़ा बनाते हैं ताकि लोग बैठ सकें है ना। तो कुआं बहुत बुलाई में से कुआं खुदा हुआ था, और वहाँ पे गड़िया जात होती है, गड़िया जानते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो लोग तीन चीज में साथ रहते हैं, एक तो कटवासा रखते हैं और अपने कंधे पे कंबल रखते हैं, उनका ड्रेस यूनिफॉर्म, एक कटवासा और एक कंधे पे ब्लैंकेट कंबल रखते हैं, और एक उनके पास डोरी होती है, हम लोग डोरी बोलते हैं गांव में, उसमें एक लोटा फंसाए रहते हैं कि जब प्यास लगे तो कुएं में से पानी निकाल कर पिए। ये तीन आइटम उनके पास होता है। तो वहाँ पे गड़िया जाते लोग, गड़िया वहीं अपना डेरा रहता है जहाँ पानी की व्यवस्था हो। तो वो कुएं के पास कुछ दूरी पे वो लोग भी सो रहे थे। जब अंधेरा हुआ तो एक क्या किया कि जो कुआं था, तो कुएं के जो जगत, उसको जगत बोलते हैं, थोड़ा चौड़ा होता है, तो उसने कहा कि हम इसी जगत पे क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। अब देखिए, अब भौतिक शरीर है ना, थका मादा इस शरीर क्या हुए, सो गई, ध्यान सुनेगा। अब जब वो सो गया तो उसके दिमाग में इस शरीर में जब था यही क्या आदमी इस शरीर में जिस चीज का चिंतन करता, ध्यान करता, स्वप्न में वही चीज उसको दिखाई देती है ना। तो जब इस शरीर माने सो गई, अर्थात इस शरीर से हम सो गए, तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हम एक्टिव के, हम आत्मा है ना, हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, तो उस शरीर में एक्टिव है, उस अब स्वप्न में क्या देखता है, अब स्वप्न में एक्टिव हो गया, तो जो इच्छा उसकी किया था इस शरीर में, तो स्वप्न में वो चीज को नजर आने लगी। अब उसमें क्या हुआ कि वो अपने घर पहुंच गया, स्वप्न में वो अपने घर गया, माता पिता से ब्याह किया है ना, बात करने के बाद बारात गई, उसकी शादी हो गई स्वप्न में ही। जैसे आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में तीन घंटे में सारे सीन दिखा देते हैं है ना, जन्म से लेकर के सारा सीन दिखा, तो ऐसे रील जो है स्वप्न की रील बड़ी तेज चलती है ना। तो वो जो है उसकी शादी हो गई, जब शादी हो गई तो घर लेके आया है ना, और उसके बाद बच्चे भी हो गए स्वप्न में। जब बच्चे हो गए तो उस समय क्या है, बच्चा बहुत तेजी से रो रहा था, तो उसकी जो पत्नी स्वप्न में, उसकी पत्नी बच्चे को गोदी में लेके आई, अब बोलती है कि बच्चा बहुत रो रहा है, आप अपने पास इसको सुला लो है ना। तो कही हमारे पास तो जगह कम है ना, तो कही थोड़ा और इधर खिसक जाओ है ना, जगह बन जाएगी। तो उस वो खिसक गया, और जब खिसक गया पत्नी के कहने पर, तो कुएं में गिर गया कि कुएं के पास हो रहा था। देखिए सपने में वो पत्नी, जब उसका बेटा रोने लगा तो अब सपने में, तो उसे कहता कि जगह तो कम है, तो कहे थोड़ा सा और इधर खिसक जाइए तो जगह बन जाएगी, हम बेटे को आपके साथ सुला देती हूँ। तो वो खिसक गया, जैसे खिसका, चूंकि वो कुएं गिर गया, समझ के मैं क्या सुना था, जैसे कुएं गिरा उसकी नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो न पत्नी न बच्चा कुएं में गिरा हुआ है, तो बड़े जोर चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो गड़िया जात के लोग होते हैं वो वहां सो रहे थे, और दौड़ के किया कुएं से आवाज आ रही चिल्लाने की, बेचारे आए तो उनके पास जो रस्सी होती है बड़े खींच कर किसी तरह से उसको निकाला, तो कहां कहां तुम यहां कैसे गिर गए, कहे कि यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर, हम लोग पहुंचा, कहे ना 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 मैं अब घर नहीं जाऊंगा, जब सपने की स्त्री मुझे कुएं में गिरा सकती है, कहे जब सपने की स्त्री मुझे कुएं में गिरा सकती है तो मैं असली स्त्री से पाला पड़ेगा तो मेरा क्या होगा, अब मैं शादी नहीं करूंगा, भागा वहां से वापस। कहे जब सपने की स्त्री मुझे कुएं में डाल सकती है तो मैं साक्षात जब आएगी तो मेरा क्या होगा, इसे मैं अब शादी नहीं करूंगा, हमारा जंगल ही ब्रह्मचर्य रहने ही वाले अच्छा है, वापस चला गया। तो कहने का मतलब कि स्वप्न का सुख, चाहे ये जो प्रेजेंट में आप देख रहे हैं इसका सुख, ये दोनों सुख क्या है, व्यर्थ है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने ये समझाया इस तरह कि हमें व्यर्थ है। आप खुद सोचिए, आप एक गुलाब जामुन खाए, रसमलाई खाए, आप कितने कितने देर तक खाएंगे है ना, तृप्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे एक घंटा दो घंटा हुआ, अगर पुनः आपको रसमलाई दिया आप फिर खाएंगे। अच्छा, इन सब चीजों से कभी आप तृप्त हो ही नहीं सकते किसी भी चीज, ये जान लीजिए। आप एक बार खाना खाते, आप सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लिया, चलना कुछ ऐसा नहीं है, हर चार घंटे के बाद आप भूख लगी लगी, क्योंकि हर चीज का है टेम्परेरी है, टेम्परेरी एक नहीं टेम्परेरी। एक बार आपने मुगल गार्डन देख लिया राष्ट्रपति भवन का, आप नहीं कह सकते लेकिन आपको दिल के दोबारा एक बार देखने का मौका मिल जाए, है ना। क्योंकि सुंदरता का आनंद नेत्रों से लिया जाता है, जो इंद्रियां हैं उनका यही काम है। तो ये जितने इंद्रिय सुख है, इंसान क्या करता है, तृप्ति इंद्रियों को, तृप्त सुख को प्राप्त करते करते शरीर छोड़ देता है, लेकिन फिर भी अतृप्त रह जाता है। तो क्या है, ये व्यर्थ है। ये श्लोक ये समझा रहा है कि हर इसी प्रकार से दुख है। तो सुख और दुख एक क्या है, वास्तव में देखा जाए ये दोनों व्यर्थ हैं और स्वप्न के समान है। इनको समझना है, ये सच्चाई है। क्योंकि जिस संसार में हम जी रहे हैं, आप जानते हैं ये वर्तमान, जैसे आज सच्चाई ये है कि वर्तमान ही आपका है, ये ध्यान रखिए, वर्तमान ही हमारा है। स्टर्डे और टुमारो का कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ये है ही नहीं। सिर्फ डेट कंडक्शन करने से कल आज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वर्तमान ही होता है। आप वही होते हैं, आपका घर वही होता है, यही सब होता है, कैलेंडर बदलता है लेकिन आप वही होते हैं, प्रेजेंट ही सब हो जाता है। जैसे आज का आज कौन सा दिन है, मंगलवार, कल था सोमवार, तो सोमवार मंगलवार के बीच में ये दिन डेट से बदल जाता है, लेकिन बाकी हर चीज वही रहती है। ये तो एक एडजस्टमेंट है, टाइम को हम लोग इस तरह से डिवाइड करके अपना जीविका चलाने के सिस्टम बनाया हुआ है, जबकि भगवान का जो सिस्टम है उसमें कोई अंतर नहीं, चीज होती है। और जैसे 2013 जाएगा और 2014 आएगा, लोग पागल हो जाएंगे इंडिया गेट पे, नया साल आ रहा है, क्या नया साल आ रहा है, वही कुछ नहीं। तो ये सब क्या है, ये भ्रम है, यही भ्रम है, ये सब भ्रम है। इस भ्रम में हमको क्या करना चाहिए, भ्रम के जाल से बचना चाहिए। एकमात्र है कृष्ण महानामृत, हरे कृष्ण आंदोलन जो है, यही आपको इस भ्रम से क्या करता है, बचा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब देखिए, चूंकि प्रसंग हिरण्यकश्यपु का है, ये समझ गए क्यों क्यों ये व्यर्थ होता क्या है। प्रभुपाद जी अपने तात्मिक चीज और बड़ा अच्छा होता है, ध्यान सुनेगा देवी देवताओं के बारे में। हिरण्यकश्यपु ये जितने भी दुष्ट हुए हैं, सबने किसकी पूजा की, देवताओं की। जितने भी ये दुष्ट राजा हुए हैं, सब किसकी पूजा की, देवताओं की, और बड़े बड़े देवताओं की, हाँ शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, कहीं इनसे बड़ा और कोई देवता नहीं। देवताओं में दो श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी, और बाकी सब देवता तो छोटे छोटे हैं। जैसे 33 करोड़ देवता हैं, तो कुछ 33 करोड़ देवता में कुछ ही प्रमुख हैं, और सबसे प्रमुख क्या है, ब्रह्मा जी और शिव जी, है ना। बाकी उसके बाद यमराज जी हैं, वरुण जी हैं, अग्नि देवता जी हैं, कुछ हैं जो कि आप गिन सकते हैं। बाकी सब देवता हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, आप सुनिए ना, बस देवता हैं लेकिन उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, देवता है बस, ऐसा यही स्थिति है सब देवताओं की। अब देखिए यही स्थिति है, तो आप खुद सोचे कि जब ब्रह्मा जी और शंकर जी की इतनी कठिन तपस्या करके, अब फिर भी ये जितने राजा चाहे उत्तृष्टांत चाहे अगर के, तो उनको क्या मिला, मौत ही मिली, है ना। इससे मैं क्या सुना कि आप देवताओं की पूजा करके कुछ भी मांग लो, लेकिन जो आपको मिलेगा वो परमानेंट नहीं, क्योंकि देवताओं का जीवन खुद अपूर्ण है। जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर होना चाहता हूं, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमृत का वरदान कैसे दे सकता हूं। तो आप खुद सोचे कि भगवान में और देवता में क्या अंतर है, यही अंतर है कि जो भगवान ले सकते हैं वो देवी देवता दे नहीं सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो ऐसे के पास जाए क्यों, क्यों जाए? आप खुद सोचे, आप ऐसे देवी देवताओं के पास जाओ क्यों जो हमें वो नहीं दे सकता जो भगवान दे सकते हैं। लेकिन हम भ्रमित हैं, हमारे बुद्धि क्या है, भ्रमित है। जैसे इन राक्षसों की असुरों की बुद्धि भ्रमित होती, वो क्या चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, बल चाहते हैं, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं कि मरे नहीं, है ना। आज लोग जो हैं यही कर रहे हैं, असुरों की नकल कर रहे हैं। आज कल के लोग है ना देवी देवताओं के चक्र में वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। हनुमान जैसे मंगलवार का दिन है तो कनाट पे हनुमान जी का मंदिर है, जितनी बूंदी नहीं उतनी समस्या ले खड़े रहेंगे, जितनी बूंदी नहीं उतनी समस्या ले खड़े लाइन पे, है ना। और जो हनुमान जी पहुंचेंगे तो जितनी समस्या लेके आए सॉल्व कराने का प्रस्ताव रखें कि अगर ये समस्या हमारी पूरी हो जाएगी तो हम फिर दर्शन करने कंडीशन। जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी फिर दर्शन करने आएंगे, इसलिए क्रम चलता रहता है, इच्छा उनकी पूरी होती है दर्शन करते रहते हैं। सोचने वाली बात है। यही असुर लोग करते थे, हम लोग भी यही सब कर रहे हैं। हम कभी नहीं सोचते कि उन परम भगवान की भक्ति करें, है ना, जिससे क्या होती है परम संतुष्टि। ये जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रावण कंस हिरण्य कश्यप जितने भी लोग आए, है ना, इतनी घनघोर तपस्या की, है ना, लेकिन बाद में वही ढाक के तीन पाद निकला। तो प्रभुपाद के इसलिए हमें अगर भक्ति करनी किसी करनी है जिसका नाम सब लेते हैं, जब विपत्ति पड़ती है तो देवता भी जिसकी शरण में जाते हैं, भगवान की शरण, भगवान शरण। इसलिए हमें भगवान की शरण में आना चाहिए, कृष्ण की शरण में। शंकर जी ने जिसको वरदान दिया, एक असुर था उसको वरदान दे दिया कि तुम जिस पर अपना हाथ रख दोगे वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जब ये वरदान मिल गया, है ना, तो उसने कहा, क्योंकि शंकर जी जब वरदान देने के लिए आए उसकी तपस्या प्रसन्न हुए तो साथ में पार्वती जी को लेके आए। अब पार्वती जी इतनी सुंदर है ना, और उनकी सुंदरता को देख करके उसने कहा कि सबसे पहले हम इसी आदमी को भस्म करेंगे, कि अगर पार्वती को भोगना है तो पहले शंकर जी को भस्म करना पड़ेगा, है ना, कि उसकी दृष्टि किसकी पर गई, पार्वती की सुंदरता पर। तो उसने कहा कि हम पार्वती को सुंदर पाना है तो पहले इनको निपटाना है, इसलिए शंकर जी के ऊपर जो है हाथ धरने की दौड़ा। आप जानते हैं कि शंकर जी भागे अपना प्राण बचाने के लिए और वो पीछे पड़ गया राक्षस, अंत में भगवान उनको प्रकट हो गए वहां पे, बोला कि शिव जी कहाँ भागे जा रहे हैं? तो कहे मुसीबत मैंने वरदान दे दिया है ना, उन्होंने अपनी व्यथा बताई कैसी सी प्रॉब्लम है, कहे ठीक है ठीक है ठीक है, हम इसको संभालते हैं। उसके बाद भगवान ने क्या किया, एक स्वयं एक हाँ, और उसको बोला कि भाई इस आदमी के तुम आप विश्वास कर लिए, है ना, नंगा जंगा आदमी सांप बिच्छू लपेटे हुआ, है ना, है ना, इसके बाद भी आ गए कि जिस पर हाथ रख, मुझे तो नहीं विश्वास है कि हाथ रख दो चला जाएगा। भगवान का एक लाभ है, गुण है वाक्पटु, भगवान बात करने मास्टर थे, वाक्पटु का मतलब मास्टर है ना, बात करने के मास्टर हो। तुमने कहा कि हमें तो विश्वास नहीं होता, तो कई बात सही है, भगवान समझाए, आदमी ने समझे ऐसा हो नहीं सकता, तो कह फिर क्या करे, अरे भैया पहले तुम अपना हाथ अपने ऊपर रख टेस्ट करो कि उसका पर्दा झूठा है या सच्चा है। वो बात भी आ गया कि बात तो सही है, उसने क्या भगवान के कहने पर अपना हाथ अपने ही सर पर रख दिया और जल के खाक हो गया, भस्म हो गया। तब भगवान वहां शंकर जी को डांटते हैं, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को भगवान कई बार डांटते हैं। जानते हैं भगवान क्या बोलते हैं कि देखो भाई तुम देवता लोग है ना, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हो और ऐसा वरदान देते हो कि मुसीबत तुम्हारी गले लग जाती है। तब वरदान देते हैं तो सोच समझ के वरदान दिया करो, हम कितना संभालेंगे तुम लोग। ये सच्चाई है। तो हम ऐसे देवी देवताओं के पीछे पड़े ही क्यों जो बेचारे खुद मुसीबत गिर लगती है और भगवान क्षण जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें भक्ति करनी है, शरण जाना है तो किसकी शरण जाओ, जिसकी शरण में देवी देवता भी जाते हैं। समय बहुत कम है, अगर हम इन्हीं सब के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए शॉर्टकट प्रभुपाद कहते हैं, अगर सीढ़ियां हैं तो सीढ़ी पर मत चढ़ो, अगर दूसरा ऑप्शन है एल्टिवेटर तो हमें क्या पकड़ना चाहिए, एल्टिवेटर। जब हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है तो हमें ओम नमः शिवाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो भगवान का नाम है कहां से आया है, बैकुंठ लोक से। तो बैकुंठ लोक जाना है तो बैकुंठ लोक से आया हुआ जो मंत्र है उसको हम अपनाएंगे तभी वहां जाएंगे, नहीं तो उन लोगों में फंस जाएंगे जहां से फिर आना है। इसीलिए गीता भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोग को जाते हैं, लेकिन जो मेरे शरण जाता है वो मेरा धाम होता है। और ऐसा धाम जहाँ सूर्य और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो दिव्य धाम है हमारे प्रकाश से सम प्रकाशित रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ जाएगा, वहीं जाना चाहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, महाप्रद जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो मेरी शरण में आता है। हमें किसकी शरण में जाना चाहिए ये समझना चाहिए, हमें भगवान की शरण जाना, कृष्णस्तु भगवान शरण। ब्रह्मा जी के कहे कृष्ण, कृष्ण स्वयं क्या है, भगवान है। हमें कृष्ण की शरण आना चाहिए और उसका सरल तरीका क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये आसान तरीका है। जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे तो फिर आपको कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक उदाहरण है, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़े नहीं पढ़े, हनुमान चालीसा बहुत प्रसिद्ध है। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि भूत पिशाच निकट में आवे महावीर जब नाम सुनाए। जब हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच हमारे नज़दीक नहीं आते। अब खुद समझिए, हनुमान जी भगवान नहीं है, हनुमान जी भगवान है, माता जी लोग बताए हनुमान जी भगवान है, हनुमान जी भगवान नहीं है, वो क्या है, भगवान के सेवक। आप खुद सोचे जब भगवान का एक दास का नाम लेने से भूत भाग सकते हैं, तो जब मालिक का नाम, मालिक कौन है, कृष्ण राम, जब उनका नाम लेंगे तो भूतों का क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये समझना है, जब लाइन कहती है कि भूत पिशाच निकट आवे महावीर जब नाम, जब भगवान के दास का नाम लेने से इतना परिवर्तन हो सकता है, जब स्वयं मालिक का नाम लेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि लाखों राहु केतु भी अगर आप में रहेंगे सब भाग खड़े होंगे, लेकिन सच्चे दिल से अगर भगवान का नाम लेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र में इतना बड़ा परिवर्तन है। इसलिए जब भी किसी देवी देवता का दर्शन कीजिए, हमें सम्मान गणेश जी का भी करना चाहिए, हनुमान जी का भी करना चाहिए, ब्रह्मा जी जितने भी देवी देवता हैं सबको सम्मान दो, सब क्या करो प्रणाम करो, लेकिन नाम किसका लो, भगवान का। क्योंकि शंकर जी स्वयं आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो बताएंगे किस तरह से शंकर जी पार्वती जब बातचीत होती है तो शंकर स्वयं कहते हैं कि मैं किसका जप करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप पद्म पुराण पढ़िए, सुन दिया कि हम तो भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूँ। पार्वती जी सोचते हैं कि दुनिया तो आपका नाम जपती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि आप भी किसी का ध्यान करते हैं, वो कौन है जिसका आप ध्यान करते हो? तो शंकर जी क्या होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है तो हमें कृष्ण, यही भगवान कृष्ण क्या किया, अपने विश्व रूप में सारे देवी देवता सारे लोग सबको दिखा दिया। तो भगवान ही क्या है, कृष्ण ही सबके क्या है, स्रोत। तो ऐसे जो परम स्रोत है हमें उसकी शरण में आना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे पेट में अगर खाना पहुंच गया तो हमें एक एक अंग को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो आपको सारे देवी देवता भूत प्रेत पितर लोग के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम भगवान अगर आपसे प्रसन्न है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत बताता है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान कृष्ण मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता, और कृष्ण बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। ये प्रसंग आगे आएगा, हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद महाराज आएंगे क्लाइमैक्स में तब पता चलेगा क्या हो। वे तो स्टोरी चल रही है। हरे कृष्णा।